मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, AFEIS के आज 19 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान मित्र नीतिका सिंह का, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सोमवार है, और सोमवार को यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित न हुई हो इससे पहले, तो हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के ऊपर कुछ बातें करते हैं, और आज भी मैं इसी विषय पर बातें करूंगा। लेकिन एक दो जो छोटी छोटी चीजें हैं, एक इन्फॉर्मेशन के बतौर, जैसे सोमवार को हम लोग कोविड के बारे में भी थोड़ी सी बातें करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आप लगातार न्यूज से जुड़े ही होंगे और देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कोरोना का संकट है भारत के ऊपर, वो थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो ठीक होने की जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। 88% सोचिए तक हम पहुंच गए हैं, और मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है, लेकिन बहुत कम कम हो रही है। अभी भी 1.52% बनी हुई है, जबकि काफी समय से 1.5-1.6 के आसपास ही हम चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि देखिए, चूंकि पेशेंट कम होते चले जा रहे हैं और इतने पेशेंट पहले भर्ती हो चुके हैं और इनकी इतनी डेथ हो चुकी है, तो अगर अभी सफलता ज्यादा भी मिलेगी तो जब उसे प्रतिशत में निकाला जाएगा तो प्रतिशत में वो बहुत कम आएगा। इसीलिए आप इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट मत कर लीजिएगा कि चूंकि मृत्यु दर में तो बहुत कुछ कमी नहीं हो रही है, तो इसीलिए कोरोना का संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस बीच में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने जो खासकर कोरोना को लेकर के जो अलग अलग समितियां बना रखी हैं, उनमें जो दो समितियां हैं उनकी चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा। एक समिति है नेशनल सुपर मॉडल समिति, है ना, ये वैज्ञानिकों की समिति है। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका ऑब्जर्वेशन है कि हमारे देश में जो कोरोना का पीक था, मतलब चरम जो स्थिति थी, वो सितंबर में आ गई, और अब उनका अनुमान है कि फरवरी 2021 तक ये जो कोरोना है ये खत्म हो जाएगा भारत से। ये उनका अपना मानना है। लेकिन एक दूसरी समिति भी है, खासकर इस समिति की चर्चा लगातार होती भी है और आपको न्यूज चैनल्स पर देखने को भी मिलती होंगी। वो समिति है जो महामारी से निपटने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बना रखा है, और इनके जो प्रमुख हैं VK पॉल, कई बार आपने चैनल्स पर उन्हें देखा भी होगा। वो अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि चूंकि अब विंटर से शुरू हो रहा है, ठंड के दिन शुरू हो रहे हैं, तो इन ठंड के दिनों में इसकी दूसरी लहर आ सकती है। और आप देख रहे हैं कि यूरोप में कैसे दूसरी लहर आ चुकी है, जो पहली लहर से भी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो डेथ हो रही है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि निग्लिजेबल जैसे हैं, लेकिन फिर भी उन देशों को सावधानी रखनी है, तो बकायदे वहाँ लॉकडाउन किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी शुरू नहीं की गई हैं, मास्क लगा करके घूमने की बात कही जा रही, वो सारे प्रतिबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि इसका इलाज ही लगभग यही स्थिति में है। तो भारत के लिए भी सतर्कता बहुत जरूरी है, उन्होंने ये चेतावनी दी है। और फिर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी ये मानना है कि भारत में जो हर्ड इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं सामुदायिक संक्रमण, हो चुका है। हर्ड इम्यूनिटी नहीं कहें, सामुदायिक संक्रमण का मतलब इस तरीके से कर लीजिए कि बहुत सारे लोगों को हो चुका है, तो आप इसे पॉजिटिव वर्ड में हर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। लेकिन ये पूरे देश में नहीं हुआ है, कुछ राज्यों में हुआ है और उनके भी कुछ जिलों में ही हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में सामुदायिक संक्रमण हो चुका है। और इसके साथ ही साथ आप खबर लगातार पढ़ ही रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, कि बहुत से देशों ने वैक्सीन बना ली है, कुछ बनाने के करीब हैं, और सरकार भी पूरी इस व्यवस्था में अब लग गई है कि कैसे वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं भरत झुनझुनवाला साहब का, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अर्थशास्त्र को समझने के लिए जब भी आपको भरत झुनझुनवाला जी का लेक्चर आर्टिकल्स पढ़ने को मिले, लेक्चर सुनने को मिले, तो प्लीज़ आप जरूर ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। वो बहुत बेसिक्स को लेकर के और बड़े प्यारे तरीके से उदाहरणों के द्वारा अपनी बात समझाते हैं। तो प्लीज आप इसे कभी भी मिस मत कीजिएगा। आइए अब मैं मुख्य परीक्षा पर कुछ बातें करूं। फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है अभी 4 अक्टूबर को, और उसको लेकर के आपने महसूस किया होगा कि जो यूट्यूब्स हैं और जो दूसरे माध्यम हैं उनमें समीक्षा की एक बाढ़ सी आ गई है। लोग अपने अपने ढंग से इस पेपर को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये पेपर कैसा था। मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे ही 4 अक्टूबर को एग्जाम खत्म हुए थे, शाम को ही बकायदे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स लोगों ने डाले कि अनकन्वेंशनल पेपर है और बहुत ही कठिन पेपर है और जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो लगभग 45% तक चला जाएगा, कुछ लोगों ने 40% तक कहा, इस तरह की बातें कही गई। और इसके बाद जो अब जो आ रहे हैं उसमें इस पेपर की बहुत विस्तार के साथ समीक्षा की जा रही है। समीक्षा इस रूप में कि इतने इतने इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए, ये जो क्वेश्चन हैं ये यहाँ से पूछे गए, ये यहाँ से पूछे गए, इस तरीके की ढेर सारी समीक्षाएं आपको सुनने को मिल रही होंगी। मुझे नहीं मालूम कि उन समीक्षाओं से आप क्या सीख पा रहे हैं या क्या मार्गदर्शन ले पा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सीखने और मार्गदर्शन की बजाय आप कन्फ्यूज हो रहे हों, आपकी समझ में नहीं आ रहा हो कि सही कौन बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो अब इसका हल क्या है दोस्तों? हल वैसे तो आपको ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा वक्त हो चुका है तो इतनी मैच्योरिटी तो आ ही गई होगी कि आप इसका हल खुद ढूंढ सकें। और हल क्या है? हल देखिए बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। कहने वाले कहेंगे ही, वो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी चीजें दे रहे हैं, उनको जो ठीक लगता है वो आपको परोस रहे हैं, बता रहे हैं, और ऐसा हर क्षेत्र में होता है, केवल यही नहीं। अब सवाल आपके सामने है कि आप इसमें से किसे सही समझते हैं, या जिसे गलत भी समझ रहे हैं तो उनमें से कितना सही ले पा रहे हैं, या जिसे सही समझ रहे हैं उनमें से कितना आपको सही लग रहा है, ये आपके ऊपर है। तो निरक्षीर विवेक तो आप में होना ही चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो बात ये है कि अगर आप स्पष्ट रूप से और बहुत सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लीज ये जो समीक्षा की जो एक बहुत जबरदस्त बीमारी जो आपके सामने मौजूद है, इसे बचने की कोशिश कीजिए। जो बहुत ज्यादा आलोचना, समीक्षा, और यहां से पूछा गया, फलाने से पूछा गया, ये क्यों पूछा गया, वो, इससे क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये उस किताब के इस पेज से पूछा गया है, वो सब मैगजीन के इस महीने के अंक के इस टॉपिक से पूछा गया, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या अगले साल भी उसी मैगजीन के उसी महीने के उसी पेज से फिर पूछा जाएगा? क्या ऐसा अभी तक होता रहा है? अगर ऐसा अभी तक होता रहा है तो ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ऐसा होगा। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, बताने वाले बताएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि इसका आपके लिए क्या उपयोग है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको निर्णय लेना है कि मैं ये जो जंगल जैसे चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कैसे मैं अपना रास्ता निकालूं, राइट? तो दोस्तों, ये आपको निर्णय लेना चाहिए, और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, जो कुछ आप ठीक ठाक समीक्षाएं समझते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप तैयारी करते हैं और आप जब अलग अलग YouTube पर लोगों को सुनते हैं तो आप उनमें से कुछ का चयन कर लेते हैं कि भाई ठीक है, ये ठीक कहते हैं, ये ठीक कहते हैं, ये ठीक कहते हैं, तो उन्हें आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद फिर आप उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि मेरे लिए सिर्फ इतना ही काम का है, बस, बाकी ठीक है, उनको करने दीजिए, हो सकता है कि वो चीजें दूसरों के काम की हो, लेकिन आप तो अपने ढंग से विचार कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? जो भी समीक्षाएं आपके सामने आ रही है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भी थोड़े से मैच्योर हैं और संतुलित तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब का भी लगभग लगभग ये कहना होता है कि सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन में जो 4 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन से हैं आप जानते हैं, वो है आपकी हिस्ट्री है, वो आपका पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और ज्योग्राफी है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इन्हें स्तंभ मानता हूं, 4 पिलर्स। कभी भी आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लेकर के अभी तक के उठा करके देख लीजिए, कोई भी साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स के अगर क्वेश्चंस की संख्या जोड़ दी जाए तो 60% से कम होगी, कभी भी आपको नहीं मिलेगा। नॉट लेस देन 60%, यानी कि 60% प्रश्न केवल इन चार विषयों से ही पूछे जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फिर जब आप एनालिसिस करेंगे तो इनकी जो रेंज रही है वो 60% से लेकर के 72% तक रही है। मैक्सिमम 72% तक क्वेश्चंस इन्हीं चार विषयों से पूछे गए हैं। अगर हम इस बार की बात करें तो 63% क्वेश्चंस इन विषयों से पूछे गए हैं। 60% से ऊपर हो गया। इसका मतलब है कि एक सिंपल सा निष्कर्ष निकलता है कि इन चार विषयों पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि आप क्या इनसे लिबर्टी ले सकते हैं। जैसे साइंस की बात मैं करूं तो इस बार साइंस से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे सालों की तुलना में इस क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे चल करके बात करेंगे। तो साइंस के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये पिलर्स है। हालांकि देखिए क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं इस बार, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये जनरल स्टडीज के पिलर्स हैं। किसी साल ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप इनमें लिबर्टी ले सकते हैं। लिबर्टी लेने की बात मैं इस रूप में कह रहा हूं कि देखिए आपको मेंस भी देना है। मेंस में साइंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वो भी कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो चार मैंने पिलर्स बताए हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, मेंस में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये कह लीजिए कि जो आपके जनरल स्टडीज के चार पेपर हैं उनमें से शुरू के तीन पेपर के अगर कोई बोन है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो ये चार सब्जेक्ट हैं। अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में आप लिबर्टी लेते हैं, ढिलाई बरतते हैं, इसका मतलब है कि आप मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में आप अपने लिए बहुत बड़ा जोखिम मोल ले रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। तो यहां आप कोई लिबर्टी ले ही नहीं सकते। अब उनसे उनको पूछने दीजिए। तो जब आप इन चारों विषयों की बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो देखिए सीधी सी बात है कि फिर कहां से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उनकी संख्या कितनी रही, वो आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, बिल्कुल ज्यादा मायने नहीं रखती, सामान्य लगता है। चाहे फिर ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पता लगा कि आपके पॉलिटिकल साइंस से 22-23 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, लेकिन ज्योग्राफी से पता लगा कि 5 क्वेश्चन पूछे गए। किसी साल इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो अगले साल इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह का गच्चा यूपीएससी देता रहता है, लेकिन नीचे वो आपको एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वो सपोर्ट इस तरह का प्रोवाइड करता है कि अगर आपने इन चारों विषयों की अच्छी तैयारी कर ली और वो मान करके चलता है कि अगर आप सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो इन चारों विषयों की आप अच्छे से अच्छी तैयारी करेंगे ही, तो वो आपको बाकायदे 60% क्वेश्चंस इन्हीं चार विषयों से अवेलेबल करा देता है, उपलब्ध करा देता है। तो इस तरीके से आप एकदम सेफ जोन में आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इस बार एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनसे भी आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप यूपीएससी के पूरे उस पॉलिसी को देखें अब तक के पेपर्स को उठा करके, तो इंटरनल तो आपको ऊंच नीच दिखाई देगी, है ना, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है, यानी कि किसी से किसी साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए तो किसी से बहुत कम क्वेश्चन पूछ लिए गए। लेकिन जो इससे जर्क लगता है, जो आपको झटका लगता है, इस झटके को संभालने के लिए भी उसके पास अपनी एक टेक्निक है। तो दोस्तों वो टेक्निक क्या है, इन सब के बारे में और आगे भी इससे जुड़े हुए जो दूसरी बातें होंगी हम लोग लगातार बातें करते रहेंगे। फिलहाल मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि आप अभी जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनकी जो समीक्षाएं सुन रहे हैं उन समीक्षाओं के उलझन में बहुत ज़्यादा पड़े मत। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि ये जो चार सब्जेक्ट हैं ये बेसिकली रीढ़ की हड्डी हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए, इनकी तैयारी में आपको किसी तरह की कोई कोताही बरतनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं, प्रियांशु ऋषिकेश उत्तराखंड से, पूनम सागर, सगुना श्रीमाली सारंद गुजरात से, सुयश तिर्की, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, और अंकित राज मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।